رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے آٹھویں پارے کے تیسرے رب کو جو کہ سورۃ الاعراف سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی جھجک نہ ہو، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کی یاد دہانی ہو. اتاری کیوں گئی یہ کتاب؟ اس لیے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. آپ پیروی کرتے رہیں اس کی جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا، اور مت پیروی کریں اس کے سوا دوسرے ساتھیوں کی. بات شروع ہوئی کتاب سے. سورۃ الاعراف میں پہلی دفعہ قوموں پر تباہی کا تذکرہ آئے گا. سورۃ الانام میں محبت کا انداز تھا اور سورۃ الاعراف میں انذار کا پہلو ہے. دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت تمام کی کہ کس طریقے سے لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. جب نبی نہیں ہوتے تو لوگ نبیوں کو مانگتے، اور جب نبی آ جاتے ہیں تو لوگ نبیوں کے اوپر نکتہ چینیاں کرتے ہوئے اپنی من موجیوں میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. یہاں شروع میں کتاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو کتاب دی ہے وہ کیوں دی ہے. اس لیے دی ہے کہ لوگ اس کو مانیں. اسی لیے فرمایا کہ تبھی ہوں معاون ضلع علیہ کو میں ربی کو، لوگوں جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم مانتے ہی نہیں ہو. قلیلم ما تذکرو، کتنا شکوہ دکھتا ہے. آج بھی انسانوں کو دیکھیے تو بہت تھوڑے ہیں جو ماننے والے ہیں. نہ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نہیں مانتے کتاب کی باتیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت میں آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. یعنی اب اور مزے کر لو، کرو خوب آرام کرو. تم اللہ کے کاموں کو چھوڑ کر آرام پسند کرتے تھے، نماز کو چھوڑ کر تم نیند کو پسند کرتے تھے، اب پھر آرام کرو. لیکن جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو لوگوں کا حال کیا ہے؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا اور کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم بھی ظالم تھے. اب کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں جب لوگوں پہ عذاب آتے ہیں تو وہ جو عذاب کا شکار ہوتے ہیں اس وقت کوئی من پسند اپنے گانے نہیں گا رہے ہوتے، کوئی اور ڈائلاگ نہیں بولتے. اس وقت ہر بندے کو نفسی نفسی پڑی ہوتی ہے، اور ایسے عذاب یا ایسے زلزلوں اور دھماکوں کی خبریں سنتے اور دیکھتے ہوئے دیکھنے والوں کی بھی زبان پہ استغفر اللہ ہی ہوتا ہے. اس وقت کوئی کیوں نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں، کوئی سیڈ سانگ گا لیتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو شاکس لگاتا ہے تاکہ ان کے سوئے ہوئے دماغ کام کرنے لگیں. یہ تو دنیا کی پکڑ ہے نا، لیکن آخرت میں بھی اللہ نے کچھ پوچھنا ہے. اور وہ کیا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس یہ تو ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کہ کیا تم نے پیغام کا حق دیا، کہاں تک دیا، اور تم نے جو پیغام دیا تھا اس کا رسپانس کیا ملا تھا، لوگ کیا سنتے تھے، کیا سوچتے تھے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں انبیاء کرام کو اس کام پہ کوئی بہت زیادہ پمپن شو نہیں ملتی، لوگ جھٹلاتے ہی ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی دل سوزی کرے گا. سناؤ نوح کیا بنا، کیا دل پہ بیتتی تھی جب تمہارے پاس اتنے لوگ کم آتے تھے. تم سوچو تمہارے دل میں کیا گزرتی تھی. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ سکھ کرے گا. یاد رکھیے کہ انبیاء سے یہ پوچھنا ان کی دل سوزی کے لیے ہوگا، لیکن وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ سے تو یہ ہے، لیکن الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ یعنی قوموں سے یہ پوچھنا جو ہے یہ دھمکی کے لیے ہوگا. اللہ اس لیے تو نہیں پوچھ رہے کہ ان کو پتہ نہیں، بلکہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم خود اپنے پورے علم کے ساتھ ساری दास्तान इनके सामने पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब थोड़ी थे, हमें सब पता था कौन क्या कर रहा है और उस दिन के फैसले किस बुनियाद पे। वल वज़्नु यौमा इज़िन अल हक फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़ौलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और वजन उस दिन ऐन हक है, सच है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। जिसके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में मुब्तला कर लिया। कमज़ोर चीज़ों में ले गए, थोड़ी तरफ चल पड़े और वजह क्या थी? क्योंकि बिमा कानु भी आयाती न यस्लिमून, वो हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे, आयतों का हक नहीं देते थे। क्या जुल्म होता है आयतों का? पढ़ पढ़ के रख लें और डरें ना, सोचें ना, गौर ना करें। इस आयत पे एक सीडी है, सदका जारिया सीडीज में से किसके पलड़े भारी, सुनिएगा। उसमें तकरीबन हमने, मुझे से याद नहीं कितने पॉइंट से, लेकिन सारी अहादीस जमा की थी कि जिसमें नामे अमाल को भारी करने वाले अमाल का तस्करा है, तो एक बड़ी खूबसूरत चेकलिस्ट बन जाती है कि छोटी छोटी नेकियां जिनको हम बहुत हल्का जान के छोड़ देते हैं, कल क़यामत के दिन हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी। और हमने तुमको ज़मीन में बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ ज़िंदगी का सामान फराहम किया, लेकिन तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तदा की, फिर सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, फिर उन्होंने सजदा कर दिया, लेकिन इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा ना किया, क्योंकि लम यकुम मिन साजिदीन, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। खाला मा मना कल्ला तस्जुद समर्थुक, अल्लाह ताला ने पूछा तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। ये बात है इस बात की दलील कि फरिश्तों को जो हुक्म मिला था वो इबलीस को भी था, इसीलिए तो अल्लाह इसको कह रहे हैं कि मैंने तुझको हुक्म दिया था। कल अना खैरु मिन्हु, यहाँ पहला रवैया इसका नोट कीजिए, अकल इस्तेमाल कर रहा है, लॉजिक दे रहा है, बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से पैदा किया। ये ज़ालिम ये भूल गया कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, हु केयर्स तुम किससे बने हो किससे नहीं। तो आज भी इबलीस अल्लाह के हुक्मों को सुनने के बाद लोगों को यही रवैया सिखाते हैं, क्यों, क्या वजह, मैं क्यों करूं, मैं आला हूं। ईगो का प्रॉब्लम हो गया इसका, इग्विस्टिक हो गया। खलक तनी मिन नार, यहाँ से फिर दूसरी बाली की रीजनिंग पेश कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को सुन के आगे से बंदा दलीलें दे, नहीं 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 मैं बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया, ये भी इबलीस का रवैया है। फरमाया अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर चल, तुझे हक नहीं कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे, और निकल जा दर हकीकत उन लोगों में से जो खुद अपनी जिल्लत को पसंद करते हैं। अब इसको समझ आई कि मैंने क्या किया। देखिए बास लोग बहुत चर्ब जबान होते हैं ना, फ़ौरन जवाब देना पसंद करते हैं, वो नहीं सोचते कि हम जो बात कर रहे हैं इसका हमें नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा। ये भी शैतानी रवैया। गलती दो लोगों से होती है, एक वो होता है जिसे गलती हो, उसने की है कि नहीं की वो सुन के चुप कर जाता है। अगर कहने वाले ने गलत कहा होगा ना, तो उसकी खामोशी से अगले को खुद ही एहसास होगा कि मैंने गलत कह दिया। और एक रवैया फ़ौरन छट से आगे बंदा बात करके अगले को चुप करा दे, तो इसमें वो पहली गलती तो हो सकता है लगे उसने नहीं की, लेकिन दूसरी गलती इतनी भारी हो जाती है कि इसने इस अंदाज से बात की आगे, इसको बात करने का सलीका नहीं आता। ये भी शैतानी रवैया। हो सकता है इतनी ज़ुबान ना चलाता तो अल्लाह को इतना गुस्सा ना आता इसके ऊपर आदम को सजदा ना करने का, लेकिन ज़ुबान चलाकर बाज़ दफ़ा बात को लोग बढ़ा लेते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ, फिर अब समझ आई कि ये मैंने किससे टक्कर ले ली। रब्बुल आलमीन और कायनात का रब और मौत और ज़िंदगी का मालिक, तो अल्लाह ताला ने फिर इस पर बात करके इसको कहा कि तुम रहो, तो अब इसने आगे से मोहलत मांगी। कालन जिर नीला योमी यो बस उन, बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह बेपरवाह कहने लगा ठीक है, इन्ना का मिनल मुनसरीन, जाओ भाई ठीक है, तुझे मोहलत है, तुझे मोहलत दे दी। कहा अच्छा ज़रा मोहलत मिली, तो फिर ज़रा कड़ने लगा। काला फभी माँ हुई तनी, बोला अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुबतला किया, अब मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर बैठूँगा और इंसानों की घात लगा के रहूँगा और आगे और पीछे दाएं और बाएं हर तरफ से इनको घेर लूँगा। असल बात क्या है कि तू इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। कितना बड़ा चैलेंज था, आज तक इसको निभा रहा है। आगे से पीछे से आऊँगा, यानी दुनिया को पीछे डाल दूँगा, आखिरत इनकी आंखों से ओझल कर दूँगा, दाएं से क्या कि नेकियां मुश्किल कर दूँगा, बाएं से यह है कि गुनाह आसान कर दूँगा, और इनको ये सब कुछ करना बिल्कुल आसान लगेगा और मैं इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करूँगा। आप देखिए कि शैतान ने जो कहा करके निभाया। हम बाद नेकी के कितने दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम कितना पीछे हो जाते हैं, हम उसके तकाजे नहीं पूरे कर पाते। और इसने आज तक नहीं अल्लाह से कहा, अल्लाह सॉरी आई गेव अप, थक गया हूँ, अब नहीं करता, बस छोड़ दे। हो सकता है वो आज भी कहे तो अल्लाह उसको माफ़ी दे दे, लेकिन चूंकि इसने क़यामत तक की मोहलत मांगी थी, अल्लाह ताला ने इसको मोहलत दी। और देखिए अल्लाह इसे डरते नहीं, वरना कहते ना 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 पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और इसने खुद ही कह दिया कि अल्लाह ताला तेरे अक्सर बंदे जो हैं वो मेरी बात मान जाएंगे। अल्लाह ताला को क्या परवाह थी। का लखरुच मिनहा मसउमन, फरमाया निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ होकर, और यकीन रख इस पर कि जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत इन सब को जहन्नुम में भर दूंगा, यानी जहन्नुम को इन सब से भर दूंगा। और आदम तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो, जहाँ जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना भटकना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने फिर इनको बहकाया और इन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी इनके सामने खोल दे। इसने इनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है इसकी वजह भी जानते हो। अब देखिए ये अब अगले चक्कर में आ गया, बरगलाने आया, बड़ा नासिख बन के आया। रिवायात में आता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबे की सूरत में आया। ये शक्लें तो बदल ही सकता है ना, जिन्नों की आदत होती है, और ये भी जिन्नों में से ही था। तो इसने एक शक्ल ढाल ली और बुज़ुर्ग बन के जन्नत में आया और आके कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हें अल्लाह ने इस दरख्त का फल खाने से क्यों रोका है? इसके सिवा और कोई वजह नहीं कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशगी की ज़िंदगी ना हासिल हो जाए। और इसने कसम खाकर कहा कि इन्नी लकुमा लमिनन नासहीन, बेशक मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा वेल विशर हूँ। उसने ये तो नहीं कहा होगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम्हें जन्नत से निकालने आया हूँ। फिर मानते आदम और हव्वा उनकी बातें, आज भी ऐसे ही आता है हमारे यहाँ जहन में आता है इबलीस पता नहीं कैसा होगा, सर पे सींग होंगे, आग निकल रही होगी और आ जाएगा जी मैं जिन्न आ गया और पीछे दुम होगी। याद रखिए शैतान इस सूरत में नहीं आता, ये बड़ी खूबसूरत शक्ल में आता है, औरतों की शक्ल में आता है। ये सजा समरा हुआ आता है, चिकना चुपड़ा बन के आता है कि ये अल्लाह का हुक्म भूल जाता है। आदम को भी देखे, यहाँ एक छोटा सा नुक्ता नोट कीजिएगा कि आदम पे जोर नहीं चलता, जोर कैसे चला, जब ख्वाहिश पैदा हुई, लंबी उम्र की ख्वाहिश और हमेशा जीने की ख्वाहिश, जवान होने की ख्वाहिश। ये ऐसी ख्वाहिश आता है कि जो बाज़ दफ़ा अल्लाह का हुक्म बुला देती हैं। आज अगर कोई ऐसी ड्रग निकल आए या ऐसा कोई प्रोडक्ट बन जाए कि इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लो तो बूढ़े नहीं होगे, ये खा लो तुम मौत नहीं आएगी, मैं कहती हूँ पिक का बना हुआ छोड़िए, किसी और गंदी चीज़ का भी बना होगा इंसान खा लेंगे, कितनों का ईमान उस वक्त बिगड़ जाएगा। हम थोड़ी सी अपने ब्यूटी की केयर के लिए तो केयर नहीं करते, नहीं जी कोई बात नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे इसमें पिक की चर्बी पड़ी है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो शैतान हमेशा बंदे पे काबू पाता है ख्वाहिश के रास्ते, इसको बड़ा बड़ा लिख ले। जब हमारी ज़िंदगी में ख्वाहिशात आती हैं ना तो शैतान का काबू ज़्यादा होता है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी, हम सब अपनी रूटीन लाइफ गुजार रहे होते हैं जो आजकल हमारी चल रही है, हम काम करते रहते हैं, इतने में हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए, मसलन हम पाकिस्तान जाने वाले हैं, अब ये ख्वाहिश है ना कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी, तो आप देखेंगे आपकी रूटीन ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, शैतान आपके ऊपर काबू पाएगा। एक तो वो छुट्टी होनी थी ना जो आप पाकिस्तान गए हुए थे, मजबूरी थी आप उस दिन नहीं है, आपके एक हफ्ता पहले ही छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, ये वजह वो वजह। कोई हमारे रिश्तेदारों में किसी की शादी आनी हो, ख्वाहिश आएगी मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं, आप देखेंगे साथ ही वो ग्रिप ढीली होने लगती है। हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे मोड पे हों जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छी बात डिसाइड करनी है, कोई भी बात है, कोई जॉब करनी है या आपको कहीं यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई भी, आप देखेंगे कि हमारा होल्ड अल्लाह के साथ कम होने लगता है, हमारी नमाजों में तवज्जो नहीं होती, वहाँ भी बैठे वही ताने बाने बुन रहे होते हैं कि अच्छा ये करेंगे वो करेंगे। अगर हम चाहते हैं ना कि शैतान हम पे काबू ना पाए और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, तो हमें ख्वाहिशों पे काबू पाना पड़ेगा। एक इस पे पूरा लेक्चर है, ख्वाहिश से इरादे तक, हमारी दिल बदले सीरीज में, कि कैसे ख्वाहिशात के हाथों इंसान क़यामत के दिन हवा में, हाविया में जाएगा, हवाओं की तरह उड़ती है। आज जो दुनिया के इतने लोग हैं जिनको पता है ये कुरान है, ये कुरान सीखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वो क्यों नहीं आ पाते? ख्वाहिशात है बीच में। आप टटोल के देखेंगे दिल में ख्वाहिश सबके कि हम जाएँ, लेकिन बीच में जो ख्वाहिशात है ना, ये हुदन के रास्ते में हवा जो होती है ना, ये रुकावट बन जाती है। यहाँ भी यही हुआ, जू ही आदम और हवा में ख्वाहिश पैदा हुई, वो अल्लाह का हुक्म भूल गए और बात मान गए इसकी, और चूँकि कह रहे हैं मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, आज हमारे जो अपने बन के आते हैं क्या वो हमारे दुश्मन बन के आते हैं? आप इन जुमलों को सुना करें, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, क्या मुझे तुमसे प्यार नहीं, क्या है ये है वो, इस तरह की बातें हैं। नतीजा क्या हुआ, फदल्लाहुमा बिगुरूर, फिर इस तरह धोखा देकर वो इन दोनों को रफ्ता रफ्ता अपने तरीके पर ले आया। आखिरकार सब ने इस दरख्त का मज़ा चखा तो इनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए और वह अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। जहाँ नोट कीजिएगा, एक जुमला बोलूँगी शऊर के साथ आप भी लिख सके, माले हराम का पहला असर क्या हुआ? हराम था ना वो फल खाना। पहला असर यह हुआ कि शर्मगाहें खुल गई। आज भी ऐसे ही होता है, शैतान जब पेटों में हराम डलवाता है तो फिर सबसे पहले कपड़े उतरते हैं, फिर लिबास पहन के भी नंगे, इतने टाइट, इतने स्ट्रेची, इतने थिन के अल्लाह की बना। और दूसरी बात नोट कीजिए कि शैतान ने पहला हमला इंसान की हया पे किया। सवाल पैदा होता है, खाया तो फल था, कपड़े क्यों उतर गए? कितना अरसा मुझे ये बात समझ नहीं आई, इस आयत को पढ़ती थी समझ नहीं आती थी कि खाना खाया था पेट का दर्द शुरू हो जाता, मिसाल है दांत में दर्द हो जाता, खाना खा लिया था कोई बीमारी लग जाती, ये कपड़े क्यों उतर गए? तो अब समझ आ गई कि जितना ज़िंदगी में नाफरमानियों से रिस्क कमाया जाएगा, हमारे जानते या अनजाने में, हमारे माल में जहाँ भी नाफरमानी और मशकूक रिस्क होगा, हमारे माल में अल्लाह की नापसंद की चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं सूद होगा, कहीं धोखा होगा, डॉजिंग होगी, उसका असर हमारे हाल हुलिये पे दिखेगा। हमारा अच्छे कपड़े पहनने को दिल ही नहीं चाहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि चीज़ इधर ठीक हो, आप चाहते हैं आपके बच्चियाँ अच्छे कपड़े पहने, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम चेक कीजिए, जो आप खाना पकाती है उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए, उसका ब्राह रास्त असर लिबास पे आता है। और शैतान ने इस तरह से नंगा कर दिया कि जिस्म से कपड़े उतर गए। अब आप देखिए, आदम और हवा इसके पहले जंगल में तो आ गए, फल चख लिया, लेकिन दूसरे में नहीं आए, बल्कि क्या किया, वतफ़ीक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और दोनों जन्नत के पत्तों से अपने जिस्मों को ढांपने लगे। यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत नुक्ता है कि पहला बार शैतान को उन पर चल गया, लेकिन दूसरे हमले में नहीं आए। नंगे हो गए तो हो ही जाए, आज लोग कहते क्या करें, अब गुनाह कर लिए, अब तो करने ही पड़ेंगे, और कोई बात नहीं, कोई गैर थोड़ी है, इधर हम खुद ही तो हैं, नहीं, इसलिए उनको तौबा की तौफीक मिली। या नोट कीजिए नुक्ता कि शैतान के फिसलावे में आके गलती बंदे से हो सकती है, लेकिन ठहरे नहीं, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान, मैंने क्या किया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं किधर आ गई, ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या सुन लिया, ये मैंने क्या पहन लिया, बस फौरन शैतान भाग जाएगा इंशाल्लाह। इंसान है, उसका पाँव फिसल सकता है, लेकिन इंसान बुरे काम पे रह नहीं सकता। और दूसरी बात जो हमें इसके बाद आएगी वो क्या कि अल्लाह से मजबूत ताल्लुक, दुआ मांगनी होगी। इसीलिए जब इन्होंने ये काम किया तो वनादाहुमा रब्बुहुमा आलम अनहकुमा, और पुकारा इनके रब ने इनको, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से ना रोका था और ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोल उठे, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अगर तूने हमसे दरगुजर न फरमाया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये नोट कीजिए, जो ही उन्होंने पैचअप किया ना अपने गुनाह को, जन्नत के पत्तों से ही छुपा रहे, कह देते कपड़ा ही कोई नहीं, नहीं, जो असबाब मौजूद थे वो यूज़ किए, अल्लाह ने पुकार लिया। आज भी यही होता है, बंदा गुनाह के बाद हत्तुल वसा उस गुनाह को छोड़ के तलाफी करे अपने उस गुनाह की, तो फिर अल्लाह की पुकार आती है, हैया लिल फला, आओ मैं तुम्हें पुकारता, अभी भी मैं मायूस नहीं हूँ तुम्हारी हिदायत से। और जो ही अल्लाह ने उनको पुकारा तो साथ ही अच्छी दुआ की तौफीक इनको मिल गई। ये सब मरबूत हैं आयतें, एक से एक आयत आपस के अंदर जुड़ी हुई है कि किस तरह अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ता है, और फिर अल्लाह ताला उनको अब इसमें से बचने का रास्ता बताते हैं। قال بتوا بعدكم لبعض عدو, अल्लाह ताला ने फरमाया उतर जाओ तुम में से एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ख़ास मुद्दत तक ज़मीन में ही रहने का ठिकाना है, और सामान दुनिया से फ़ायदा उठाओगे, और वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है, और इसी से फिर तुमको निकाला जाएगा। यहाँ पे ये किस्सा बुनियाद बनाकर असल जो मोटिव था इब्लीस का उसको खोल के पेश कर दिया कि इब्लीस को उस दरख्त के फल से कोई इंटरेस्ट नहीं था, असल में वो बेलिबास करना चाहता था, कल भी और आज भी। इसीलिए फरमाया, या बनी या आदम क़द अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया कि तुम्हारे जिस्म के काबिले शर्म हिस्सों को ढांप दे और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का सबब भी हो, और बेहतरीन लिबास तो तकवा का लिबास है, और लिबास तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे नसीहत हासिल कर लें। यहाँ देखिए लिबास के दो बड़े मकासद पेश किए गए, नंबर एक, युवारी सवाती को, शर्मगाहों को ढके। शर्मगाह से मुराद सिर्फ ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، شرمگاہ سے مراد پورا ستر ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو لسٹ پہ ملوث کرے۔ فقہی تعریفیں تو بہت سی ہوں گی، لیکن جسم کا ہر وہ حصہ جس کو دے کر اشتہا بڑھے۔ جب قومیں زوال شدہ ہوتی ہیں تو وہ صرف پرائیویٹ پارٹس تک اس کو جوڑ لیتی ہیں، اور بعض تو پھر اس کے بھی مخصوص حصوں کو، اس میں سے بھی آدھا کھلا ہی ہو تو پھر ہی کا دل بھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لباس تمہارا جسم کو چھپائے، سردی سے بچائے، گرمی سے بچائے۔ اس کی دو شرائط ہیں، نمبر ایک کہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء سارے دکھے، اور دوسرا اتنا ملائم یا اتنا لچکدار نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک حصہ دکھے۔ عربی میں اس کو بولتے ہیں نہ شفاف ہو، سی تھرو، اور نہ وصاف ہو، ٹائٹ۔ آج اس آیت کو لے کر ذرا آپ باہر کھڑے چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ جو شلواریں تو چھوڑ دیجئے، پینٹ بھی اب چھوڑ دیجئے، اب جو مصیبت ٹائٹس کی آ گئی، یقین کریں واللہ ہی ایسے لگتا ہے کہ ننگی ٹانگیں چل رہی ہیں۔ آپ دور سے آتا وقت دیکھیں ان کا، تو وہ چاہے اسکن کلر ہے، چاہے وہ وائٹ ہے یا بلیک ہے، وہ بالکل جسم کا، ٹانگ کا، گھٹنا، اس کی تھائیز کے ایک ایک جوڑ کو دکھاتی ہے۔ اور وہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پہن کے گھروں سے نکلتی ہیں تو باپ اور بھائی اور شوہر اور بیٹے کدھر ہوتے ہیں، ان کی حیا کدھر ہے؟ بالکل اپنے جسم کی کھال کے اوپر ایک اور کھال چڑھا لیں، یہ لباس ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو الحمدللہ نہیں پہنتے، اپنی بچیوں کو بھی ختم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کل آپ کی بچیاں نہ پہنیں بڑے ہو کے یہ چیزیں، پیدا ہوتی بچی کو آپ کبھی ٹائٹ کپڑا نہ پہنیں۔ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا لیگنس بولتے ہیں اس کو، چھوٹی سی بچی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پیمپر اوپر پہننا ہوتا ہے اور ٹائٹ سے اس کو شلوار پہن دیتے ہیں، وہ گھر کے مرد بچے ساری اٹھاتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے؟ آپ شروع سے بچوں کو ڈھیلا پہنائیں، اور جب سردیاں آتی ہیں اور مصیبت ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید اتنا ٹائٹ نہیں پہنیں گے تو ٹانگیں نہیں بچیں گی، تو اس کے اوپر ایک اور بھی پہن لو پھر۔ ڈھیلے شلوار یا کھلے پنچوں کی شلوار والے تو کبھی نہیں سردی سے مرے، کبھی ان کے گھٹنوں کو کچھ نہیں ہوا، جو اتنا کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں کو زیادہ تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شیطان کسی راستے سے ہماری حیا پہ حملہ نہ کر دے۔ پھر دوسرا ہے وریش، خوبصورت بھی ہے، اور تیسری بات یہ کہ لباس اللہ کی نشانی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لباس کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے انسان، کچا گوشت کہیں پڑا ہو تو کہتے ہیں اس کو ڈھانپ دو، مکھیاں آئیں گی، تو ہم کیا ہیں؟ ہم گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے۔ کتنا بھی ڈھنگا جسم ہوتا ہے انسان کا، صرف اب لسٹ کو ہٹا کر ایک نیکڈ انسان کو دیکھے تو ایک گائے بھینس کے گوشت میں اور ایک موٹے انسان کے جسم میں کوئی فرق دکھتا؟ یہ تو شیطان نے اس میں اٹریکشن پیدا کر دی نا، کہ جتنا ننگا کر دو اتنا اس کو خوبصورت لگتا ہے، ورنہ وہ اللہ ہی جو اپنا جسم کھول کھول کے دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ کپڑے اوپر آپ کتنے خوبصورت پہن لے وہ اچھے لگیں گے، لیکن بے لباس انسان تو کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ ہاں جسم کے تقاضے پورے کر رہے، پھر اس پہ موتی لگا لو، ستارا لگا لو، رنگ لگا لو، کپڑا پہن لو، کلر کر لو، کوئی بات نہیں۔ یہاں یاد رکھیے پہلی دفعہ لباس کا موضوع آ رہا ہے، قرآن پاک میں تین جگہ آئے گا، اور یہ لٹرل لباس ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت عورتوں میں کیا پہنے، آگے سورت نور میں آئے گا عورت گھر کے مردوں کے سامنے کیا پہنے، پھر سورت الاحزاب میں ہم پڑھیں گے کہ باہر کیا پہنے۔ یعنی اللہ نے تو ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی، ہم نہیں سمجھتے تو ہماری مرضی۔ تو عورت عورتوں میں بھی ایسے لباس نہیں پہن سکتی کہ جس سے دوسری عورتوں کو بھی اس کی طرف اٹریکشن محسوس ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما خرجکم ابویکم من الجنتی۔ دیکھیے اس سے بھی زیادہ کوئی پیار سے ہمیں بلا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ کیسے؟ ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے، کیوں؟ تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کی دلیل کیا؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جس کے بارے میں تمہیں خود علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کیا جائے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک اور گمراہی اس قوم میں کیا آ گئی تھی کہ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ नंगे आते। देखिए शैतान बंदे को दीन के नाम में भी बहकाता है, जैसे आज भी कईयों को कब्रों पे मजावर बनाकर, बेलेबास बनाकर, कई औरतें अपने हाल हुलिये से बिल्कुल बेनियाज अपने बालों को खोले हुए, जैसे क्लिप्स मिलते हैं बाज़ दफ़ा कि कब्रों पे औरतें बिल्कुल बाल खोल के भंगड़ा डालती हुई, धमाले डालती हुई, उनका जिस्म खुल रहा है, उनका सीना खुल रहा है, उनको कोई परवाह नहीं, और कहते हैं कोई नहीं ये झल्ली है, ये अल्लाह वाली, और ये कब्रों पर हो रहा है, मज़ारों पर हो रहा है, दरगाहों पर हो रहा है, दीन का नाम लेके उन्होंने हर दौर में ऐसे किया। मादर जात नंगे होकर खाना काबा का तवाफ़ करते थे, औरतें सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट पर चमड़े का एक टुकड़ा बांध लेती थी। आप सोचिए जहाँ इबादत के नाम पे इतने बेहयाई होगी वहाँ बाकी क्या होगा। आप इंडियन मूवीज़ में देखें, हिंदुओं के बाज़ त्यौहार ऐसे आते हैं कि जब औरतें मंदिर पर जाती हैं तो जो उनकी दासियाँ होती हैं, जो उनके मंदिरों की देखभाल करती है, उसको दासी कहते हैं, उसका लिबास ही यकीन करें कि सिर्फ अंडर गारमेंट्स हैं, पूरे कपड़े नहीं पहन सकते। वो कहते नहीं जिन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं हम ये कपड़े पहन के भगवान के सामने नहीं जाते। शैतान को और क्या चाहिए, वो और ज़्यादा ऐसे काम करके रखेगा। अल्लाह ने क्यों कहा कि नमाज़ों में अपने कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो। यहाँ से औरत का नमाज का सतर भी हमें समझ आता है। इस पर हमने जब तफसील से बात की थी तो बहुत डिटेल से बात की थी कि किस तरह लिबास नमाज के लिए औरत का लाजिम है, कि सर से लेकर पाँव के ऊपर के हिस्से तक उसका जिस्म जो है वो छुपा होना चाहिए। लिबास नमाज का जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाज में उससे कोई खुशी और खुदू ही ना रह जाए, और एक इंसान ऐसे मामलात में अपने आप को और ही ज़्यादा अल्लाह ताला से दूर करे। फरमाए फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहि मुद्दलाला, एक गिरोह को तो इसने सीधा रास्ता दिखा दिया मगर दूसरे गिरोह पर तो गुमराही चिस्पा होकर रह गई, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की बजाय शैतान को अपना सरपरस्त बना लिया था और वो समझ रहे थे कि अन्नहुम मुहतदून, कि वो सीधी राह पर हैं। ये भी नोट कीजिएगा, हर गुमराह से गुमराह बंदा, गलत से गलत काम करने वाला भी उसको हिदायत के नाम पे करता है, और यही चीज़ फिर उनको वहाँ से पलटने नहीं देती। या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए बनी आदम हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो। जीनत का लफ्ज़ लिबास के लिए आया है, ये नोट करने की बात है, वरना इसका ये नहीं मतलब कि हार बुंदे पहन लो, मेकअप कर लो। इशारा उसी बात की तरफ है कि वो कपड़े नहीं पहनते, तुम कपड़े पहन लो, और खाओ और पियो और हद से तजावुज ना करो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिबादिही, ए मोहम्मद इनसे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने अल्लाह तआला की जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने अल्लाह ताला की बख्शी हुई पाक चीज़ों को मना कर दिया। कहो ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के रोज़ तो खालिसतन इन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो यालमून, जो इल्म रखते हैं। यहाँ पर एक तकवा का एक और आर्टिफिशियल स्टाइल है, और वो क्या कि ना खाओ ना पियो ना पहनो ना उड़ो, ये उन लोगों के लिए जो दीन के नाम पर बिल्कुल बेढंगे बन जाते हैं और जो दीन के नाम पे बहुत ही ज़्यादा गरीब मिस्कीन बन के फिरते हैं ताकि लोग उनको दीनदार के। याद रखिए ये तकवा का एक खौल होता है, स्क्रैच होता है, असल चीज़ आपके अंदर है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते तो क्या मुत्तकी नहीं है, और आप बड़े पुराने एक फटे हुए कपड़े पहनते तो मुत्तकी हैं, झूठ है ये। ये एक किस्म का फ्रॉड होता है। बाद लोगों को आप देखें ऐसे लगता है बड़े बेनियाज हैं, लेकिन यकीन करें अंदर से अपनी गांठ के पक्के होते हैं। इतना उनको माल से प्यार होता है कि वो एक दमड़ी नहीं किसी को दे सकते। कुछ लोग देखने में आपको बड़े खाते पीते बड़े शाखर्च लगते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के रख देते हैं। तो ज़ाहरी चीज़ों को छोड़ देने से तकवा नहीं आता, और ज़ाहरी चीज़ों को अपना लेने से तकवा नहीं जाता। दीन इन ज़ाहरदारियों से नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में भी ईमान वालों के लिए मैंने रेशम बनाया है, दुनिया में भी ईमान वाले ही इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे, और ठीक है कुछ काफिर भी उठा ले, लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ ईमान वालों के साथ। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, यानी मैंने खाना पीना कपड़ा ये नहीं हराम किया बल्कि मैंने तो क्या, इनसे कह दो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं। आप लिस्ट बना सकते हैं, नंबर एक बेशर्मी के काम, ख्वाह खुले हों या छुपे, दूसरी चीज़ गुनाह, तीसरी चीज़ हक के ख़िलाफ़ ज़्यादती, और चौथी चीज़ कि अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक करो जिसके लिए इसने कोई सनत नाजिल नहीं की, और अगली चीज़ ये कि अल्लाह के नाम पर ऐसी बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म ना हो। کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے، یہ ہے بس آرام، اللہ باقی چیزوں کو منع نہیں کرتا، آپ لوگ غلط کام کرتے ہیں اس کے باوجود پکڑ نہیں آتی۔ اس کی وجہ بتائی گئی، وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آ پہنچتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے تخلیق کے آغاز میں ہی فرما دی تھی کہ بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود ہی تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں، وہی لوگ اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، ظاہر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے تقدیر کے لکھے کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں وہ سارے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ سب ہم سے گم ہو گئے۔ اور وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی دوزخ میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے جن اور انسان جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یعنی جو پہلے ہی وہاں تھے تنگ تھے اور بھی چلے گئے، پہلوں کی بھی گندگی تھی اوروں کی ہو گئی، یعنی اگلے پچھلوں پہ لعنت کرتے ہوئے جائیں گے۔ حتیٰ کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ پہچان لیں گے نا اپنے وڈیروں کو، بڑے بڑے سردار ان کے، جن کے کہنے پہ گناہ کرتے تھے، ٹرینڈ سیٹرز، ان لیڈز قسم کے لوگ، کہیں گے اللہ یہ بیٹھا ہوا ادھر جس کی وجہ سے میں بھٹکی تھی، بس تو ان کو آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب کیا ہوگا؟ ہر ایک کے لیے ہی دوہرا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ کیوں بھائی؟ بھئی یہ تو ان کو دیکھ کے بھٹکے، تو ان کو تو دوہرا مل گیا، ان کو دوہرا کیوں ملا؟ اس کا جواب سوچئے، یعنی جس نے پہلے گناہ کیا اس کو دیکھ کر میں نے کیا، تو بھئی پہلے کو تو اپنا بھی اور میرا بھی ہے، اب مجھے پھر دوہرا کیوں مل رہا ہے؟ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ہر لیڈر فالوور بھی ہوتا ہے اور ہر فالوور پھر لیڈر بھی بن جاتا ہے ایک وقت میں، کہ اللہ کہتے ہیں تو چین ری ایکشن شروع ہو گیا تھا، تم سب کے لیے دوہرا ہے، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، لیکن تم جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اتنی بڑی سزا تمہیں ملے گی تمہارے غلط کاموں کی دنیا میں جو تم کرتے آئے۔ اور پہلا گروہ دوسرے سے کہے گا، ہاں اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی لان تان، ایسے لگتا ہے جہنم کا عذاب ایک طرف اور وہاں کی لڑائیاں جھگڑے ایک طرف۔ دنیا میں بھی دیکھیے اکثر لوگ جب دین سے دور ہوتے ہیں نا تو ان کی خوشیوں کے موقع پہ بھی جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ شادی حالوں میں بیٹھے بھی اونچی اونچی باتیں کر کے لڑ لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ عقل نہیں ہے، وہ کہتا ہے تین نے کیا یہ تیری وجہ، ایسے بے تک کی باتوں پہ لوگ رگڑا دیتے ہیں۔ میں نے بعض دفعہ دیکھے وہ بات جو گزر چکی ہو گئی رگڑے ہی دیے جا رہے ہیں، دیے ہی جا رہے ہیں، پھر اخیر بیچ میں چلو چلو چڑھو آؤ کھانا کھل گیا کھانا کھاتے ہیں، کیسی باتیں۔ یعنی جہنم اور جھگڑے ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ اب اگلی آیتیں جو ہیں یہ روح کا سفر ہے، آپ ان کا ٹاپک لکھ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسانوں کی روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحیات، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ کیوں نہیں کھولے جائیں گے؟ دو تین وجوہات ہیں، نمبر ایک ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو باقی کچھ نیک عمل تھے وہ بھی نہیں جائیں گے اوپر، اور سب سے بڑی بات جو اس آیت میں تفسیروں میں آتی ہے وہ کیا کہ ان کی روحوں کو آسمان پہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے اپنا علمی بچپن یاد آ جاتا ہے، تب تو ریکارڈنگ کیا چھوڑے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کرنے کا، یعنی میں نے اس آیت پہ اتنی دفعہ درس دیا ہوا ہے کہ آج میں اپنے آپ کو پھر پیچھے لے جاتی ہوں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں، پورا روح کا سفر سنایا لوگوں کو، اور اتنا لوگ اس آیت پہ خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہے کیسے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بد کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، किस तरह कोशिश की जाती है आसमानों पे ले जाने की, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बुरे इंसान का जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुजरना। इस मिसाल ने मुझे बहुत बचपन में इस तरह ये झंझोड़ा था कि वाकई कैसी मिसाल है। नामुमकिन काम के लिए बोलते हैं ना कि फलां तो कहता है जी सुई के नाके में से ऊँट को गुजारो, इम्पॉसिबल ऐसे लोगों का जन्नत में जाना, और मुजरिमों को ऐसा ही बदला मिला करता है। होगा कि इनकी कब्रों में इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही का ओढ़ना, ये है वो जजा जो हम जालिमों को दिया करते थे। लेकिन इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मान लिया और अच्छे काम किए, और इस बात में हम हर एक को इसकी इस्तेदाद के मुताबिक ही जिम्मेदार ठहराते हैं, वो जन्नत में होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कदूरत होगी हम वो निकाल लेंगे। इससे पता चलता है कि बस नेक लोगों के दिलों में भी बहुत कदूरतें होती हैं। अल्लाह माफ़ करे, आज के दौर में तो एक दीनदार का दूसरे दीनदार से, एक दीनी जमात की कदूरत दूसरे दीनी जमात से, एक फ़िरके वालों की दूसरे से। अल्लाह कहते हैं हम निकाल के फेंक देंगे, जन्नत से बाहर एक नहर होगी और वहाँ उनको नहला दिया जाएगा कि चलो। इसी तरह सास बहू, शोहर बीवी, वहाँ जाके भी अगर एक दूसरे को देख के कुड़ते ही रह गए तो वो जन्नत ही कैसी होनी है। हम में से कोई जन्नत में जाके ये नहीं कह सकेगा कि तुम ना मेरे सामने आना वहाँ, नहीं, वो अल्लाह पहले ही दिल साफ़ कर देगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वो कहेंगे, ये बड़े खूबसूरत जुमले मुझे लगते हैं। आज दुनिया में भी ऐसे ही लगता है, लेकिन जन्नत में तो वाकई ऐसे लगता है कि जो नेमत मिलेगी इंसान अल्लाह की तरफ डाल देगा कि अल्लाह ये मेरा हक नहीं है। وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا, वो कहेंगे तारीफ तो अल्लाह ही के लिए जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया, हम ना थे कि इसकी राह पाते अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता, हमारे रब के भेजे हुए रसूल हक ही लेकर आए थे। और उस वक्त वनूदु अन तिलकुम अलजन्ना, ये पुकार दी जाएगी कि ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। क्यों? ورثتموها بما كنتم تعملون, उन आमाल के बदले में जो तुम किया करते थे। कल कोई आपसे पूछे जन्नत में जाके कोई पहला जुमला क्या बोलेगा, तो ये आयत नोट कर लें, पहला सेंटेंस जन्नती की जुबान पे यही आएगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। और हकीकत है कि ईमान वाला दुनिया में भी कोई नेमत पाता है, जान की, माल की, औलाद की, शोहर की, बच्चों की, तो यही कहता है अल्लाह ये तेरा इनाम है, मैं इसको डिज़र्व नहीं करती। अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में ले जाए और ये जुमला बोलने की तौफीक दे। यहाँ पे रुक पूरा हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।